السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. معمار چیریٹیبل ٹرسٹ کے بہت ہی ہونہار انسانیت نواز ذمہ دار حضرات, آواز نہیں آ رہی ہے شاید, نہیں آ رہی, جی ہلو 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 نہیں میں وہاں جی اب آ رہی ہے میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ میں مارچ چیریٹیبل ٹرسٹ کا تعارف کروایا اور آج اسے 25 سال ہو رہے ہیں. بہت بہت مبارک ہو ذمہ دار حضرات کو. معمار کا مطلب ہے آرکیٹیکٹ, بیسیکلی بلڈر, اور انہوں نے سوسائٹی کو بلڈ کیا ہے, ہیومینٹی کو بلڈ کیا ہے اور ہیومن ویلیوز کو بلڈ کیا ہے جو آج کی دنیا میں بہت ہی ریئر ہے. ایک اور بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی, وہ یہ کہ این آر آئی کے بارے میں ہمارا ایک تصور تھا, وہ یہ تھا کہ پوری جوانی باہر گزارتے ہیں, خود کماتے ہیں, یہاں کر اپنی پراپرٹی وغیرہ بنا کر آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں, یہ ایک تصور تھا. لیکن یہ ہے کہ این آر آئی کے اندر بھی زندہ دل, انسانیت کے لیے دھڑکتا ہوا دل, خدمت کا جذبہ, واپس لوٹنے کے بعد بھی اسی کام میں لگے ہوئے جو وہاں کے, وہ بھی اس وقت اسی کام میں لگے ہوئے تھے. میرے لیے ایک نیا منظر ہے, نیا پکچر ہے, میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس لیے میں نے این آر آئی کو دیکھا ہے. صحیح ہے نا سر, بہت آرام سے زندگی کرتی ہے. چلیے موضوع پر آتے ہیں. میرا یہ ہے کہ آج میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر جو ایلڈر جنریشن ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ دے آر الون ٹوگیدر. واٹ ڈز اٹ مین الون ٹوگیدر؟ آئی ول ایکسپلین ان ڈیٹیل لیٹر, بٹ جسٹ ٹو بگن وتھ, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ایلڈر جنریشن پرٹیکولرلی, وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں آج سے 20-25 سال پہلے کی زندگی بالکل مختلف ہے. ہم لوگوں کا زمانہ یہ تھا کہ فون بھی نہیں تھا, جب ہم لوگ پڑھتے تھے انٹرویو کے لیے پوسٹ کارڈ ڈالتے تھے, پوسٹ کارڈ کا انتظار ہوتا تھا انٹرویو کے لیے, روزانہ صبح 8:30 بجے پوسٹ مین آئے گا, پوسٹ مین کے لیے دروازے پر چوکٹ پر انتظار کرتے رہیں گے, اگر پوسٹ مین آنے میں تاخیر ہوگی تو سیدھے پوسٹ آفس جائیں گے, وہاں سے تلاش کریں گے. پھر اس کے بعد فون کا زمانہ آیا تو ڈائل کرتے تھے اور بیچ میں ایک آدمی سنتا تھا, میاں بیوی ایسے بات نہیں کر سکتے تھے, وہ 3 منٹ کے بعد بک کر دیتے, آپ لوگ فکر نہیں ہوں گے, یہ سب ایک دنیا تھی. لیکن آج ہمارے نوجوان نسل کو ہاتھ میں جو ہے ساری دنیا اس وقت ان کے پاس موجود ہے, ایوری تھنگ اس کے اندر موجود ہے, لیکن اس میں جو خوبیاں ہیں اس کے ساتھ اس کے جو پرابلمس ہیں, ڈے ملٹس ہیں, اس پر میں ان شاء اللہ بات کروں گا. جس کے آج ڈی ملٹس ہیں اس کا زیادہ استعمال اوور یوزیج جو ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے. اب یہ کہ دنیا اتنی ترقی کی ہے کہ لٹریسی ڈرائیو ہوا, لٹریسی کے حساب سے دنیا میں 80% سے زیادہ جو ہے لٹریٹ ہیں. آج دنیا میں کھانے پینے کا سامان اتنا وافر مقدار میں موجود ہے کہ 1960 میں جتنا ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہوتا تھا آج اس کا 3 times ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ڈرنکنگ واٹر کا اس زمانے میں پرابلم ہے, لیکن آج کسی بھی ریموٹسٹ ولیج میں چلے گئے آپ کو پینے کا صاف پانی ملے گا. آج کتنی بیماریاں دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو گئی, چکن پاکس نام کی ایک بیماری تھی ہمارے اینگر جنریشن کے لوگ جانتے بھی نہیں, وہ دنیا سے ختم ہو گئی, اور پولیو نام کی بیماری گزشتہ سال سے پوری دنیا میں صرف 70 کیسز رجسٹر ہوئے, دنیا سے پولیو کو جو ہے ایریڈیکیٹ کیا گیا. سروائیکل کینسر آسٹریلیا از گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ کنٹری ان دی ورلڈ بائی مے بی 2020 اٹ از گوئنگ ٹو ایریڈیکیٹ کمپلیٹلی سروائیکل کینسر. ایک ایک کینسر الگ الگ ٹائپ کے. دنیا نے تو ترقیاں کی ہیں, اتنی ترقی کی ہے. میں آسٹریلیا, جاپان اور بہت سے علاقے جاتے رہتا ہوں اور وہاں ٹریننگ دیتا ہوں, لیکچر پروگرام دیتا ہوں. جاپان میں جو ہے شنکانسن نام کی ٹرین ہے جس کا میکسیمم اسپیڈ ہے 610 کلو میٹر پر آور, وہ انجن جو ہے پتا ہے اسپیڈ, लेकिन मोस्ट ऑफन जो है 300-350 किलोमीटर के आसपास में जो रन करती है, तो मैं जब जाता हूँ कभी तो अराउंड 250 किलोमीटर जस्ट ट्रैवल इन वन आवर और एक घंटे 10 मिनट में पहुंच जाती है। लेकिन बहुत महंगाई है। अब एक ऐसी ट्रेन आने वाली है जिस दिन यू नो ट्रायल रहे, जैसे आप बुलेट चूज करते हैं वैसे कैप्स्यूल होगा जिसमें इंसान को बिठाया जाएगा पूरे ग्रुप को और शुरू किया जाएगा यहाँ से दिल्ली 1100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो ट्रेन जाएगी। जस्ट टू रीच दिल्ली यू नीड जस्ट 2 आवर, यहाँ से दो घंटे में नहीं चाहिए, सवा घंटे डेढ़ घंटे में आप चले जाएंगे। तो इस तरह की ट्रेन आने वाली है। बाई 2040 चांद में 1-1.5 लाख की कॉलोनी बसेगी। मे भी तब तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन आपकी जो भी जनरेशन है वो जाएंगे इंशाल्लाह चांद को। 1.5 लाख की आबादी होगी, हो सकता है कि जो उनके पेरेंट्स उनको मिले जाएंगे। मार्स का जो ट्रैवल इज गोइंग टू बी सो स्मूथ सो ऑफन सो फ्रीक्वेंट के वन दिन में फ्लाइट जाने लगेंगे मार्स को, और बाई 2040 वहां भी जो लोग आना जाना तैयार करें ट्रैवलिंग के लिए जाना शुरू कर देंगे। एक ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं। ये जापान में कार जो है एवरी 1 मिनट कार प्रोड्यूस होती है, एवरी 1 मिनट कार जो है उनकी मेन इंडस्ट्री है, लेकिन उनके पास मेटल नहीं है, मेटल चाहिए कार प्रोड्यूस करने के लिए। 2016 में दे स्टार्टेड विद बिग प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट आप यहाँ आगे चलकर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं वो ये है कि ये जो हमारा जो ग्लोब है उसका ऊपर का हिस्सा अर्थ क्रस्ट है और समंदर है, अराउंड 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर डीप। वहां से ड्रिल करेंगे तो अंदर टेक्टोनिक प्लेट होता है जिसके हलने से जलजला अर्थक्वेक आता है, फिर उसको भी अगर ड्रिल करेंगे तो नीचे मैग्मा है और मैग्मा जो है मोल्टन मटेरियल है, मेटल है, और वो बाहर आएगा। तो जापान ने स्टार्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट 2016 शुरू हो चुका, उसका शिप डिजाइन होगा, वो शिप खड़ेगा समंदर में, फिर उसके बाद ड्रिलिंग शुरू करेंगे, 8-9 किलोमीटर तो पानी में जाएगा, फिर 1-1.5 किलोमीटर टेक्टोनिक प्लेट क्रॉस करेगा, उसके बाद जो है मोल्टन मटेरियल इतना आएगा कि आप जितना चाहे इस्तेमाल करें, जैसे चाहे आप मोल्ड करें, दुनिया में किसी और उसे एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया इतनी फास्ट तरक्की कर रही है, समझ लें कि पूरे तरक्की के अंदर ये जो हम अपने हाथ के अंदर करिश्मा रखते हैं ये सारी तरह से क्वेश्चन है कि हमारा क्या किरदार है, व्हाट विल बी एज मुस्लिम। तो हमने एक जमाने में एक बहुत जबरदस्त साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन किया था, पूरी दुनिया को हमने मालामाल किया था, लेकिन आज क्वेश्चन है कि हमारा इक्विपमेंट बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो मैं ये सवाल ये चाहता हूँ हमारे यंगर जनरेशन से, अगर दुनिया से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना हो तो दो बुनियादी चीजों की जरूरत है कि सुपर डुपर आईक्यू होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उस इंटेलिजेंस के बगैर आप दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। आने वाली दुनिया में अवरेज लोग खत्म हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, इसके लिए जो रूटीन वर्क है उसके लिए कंप्यूटर्स मौजूद है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, उसके लिए रोबोट मौजूद है। यहाँ तक की जो सिंगुलैरिटी प्रोजेक्ट है जो जापान की सबसे बड़ी कंपनी है उसका कहना है कि बाय 2022 देयर आर गोइंग टू बी 7 बिलियन पीपल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन देयर आर गोइंग टू बी 7 बिलियन के बजाय 10 बिलियन रोबोट होंगे व्हिच विल बी हेल्पिंग ह्यूमन काइंड, 10 बिलियन रोबोट होंगे एंड दोज रोबोट विल ऑल्सो बी फंक्शनिंग एज जजेस एज मीडिया पर्सन, ये सब भी काम करेंगे। इतना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। तो इस जमाने में जो लोग सर्वाइव करेंगे वो जिनका ब्रेन बहुत अच्छा होगा, आईक्यू होगा, इंटेलिजेंट होंगे, क्रिएटिव होंगे, जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, रूटीन जॉब का जमाना काफी नहीं रहा। आज कितने लोग जो घर जॉब से निकाल के जाते हैं इसके लिए रूटीन जॉब करने के लिए मशीन मौजूद है, रोटी बनाने के लिए मशीन मौजूद है, ईंट बिछाने के लिए मशीन मौजूद है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मशीन मौजूद है, हर चीज के लिए मशीन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से रोबोट बिन क्रिएटेड सब काम करेंगे। अगर कोई काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन नहीं कर सकती तो सोचने का काम है, डिजाइन करने का काम है, क्रिएटिविटी का काम है। अगर मुस्लिम नौजवान इस मैदान में आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है, अपॉर्चुनिटी मौजूद है। द प्रॉब्लम इज दैट के आज ये जो गैजेट का जो एडिक्शन है उसमें होता है एक ही घर में बैठे हुए होते हैं, बाप जो है टीवी देख रहा है, माँ व्हाट्सएप में मौजूद है, बेटा जो है वो डैड में मौजूद है और बेटी जो है वो प्ले स्टेशन में खेल रही है। तो बींग टूगेदर के स्टेट अलोन, दुनिया में ये जमाना आ चुका है कि माँ खाना पकाने के बच्चा अगर ऊपर से बुलाने के लिए एक व्हाट्सएप का मैसेज डालती है कि पुलिस रेडी तो फॉरन उतर के आता है, उसके लिए 30 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता, जैसे उसने यहाँ से टाइप किया कि पुलिस रेडी वहाँ डबल ब्लू लाइट टिक हो जाता है। तो इसलिए हमारे बच्चे ऑनलाइन 24/7 होते हैं और आसान हो जाता है माँ को कम्युनिकेट करना भी। इसका जो प्रॉब्लम है ये जो गैजेट और ओवर यूजेज और एडिक्शन, इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो ये बच्चे अगर छोटी उम्र में इस्तेमाल करते हैं और ओवर यूसेज करते हैं, हम कितने जायज इस्तेमाल है, जायज इस्तेमाल से ज्यादा ओवर यूसेज, पहले तो यूसेज है, ओवर यूसेज है, जब इसके बाद में मिस यूसेज, ये तीन लेवल है। मिस यूज के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कहता, मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे मिस यूज तो नहीं करते होंगे, अलबत्त ओवर यूसेज तो जरूर करते हैं। ओवर यूसेज करने का प्रॉब्लम यह होता है कि इट हैम्पर्स योर क्रिएटिविटी। एंगर एज में जब आदमी इससे ज्यादा मुताल्लिक होता है, इसका इस्तेमाल करने लगता है, तो उसकी क्रिएटिविटी मुतासिर होने लगती है, जहानत उसकी कमजोर होने लगती है, आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। ये तो मशीन गेम जो खेलते हैं, इट बेसिकली वो जो रेज है, जो एंगर है और जवानी का जो गुस्सा है वो निकालने के लिए कंप्यूटर में जो रेस करते हैं, फाइटिंग करते हैं, ये सारी चीजें वो साइकोलॉजिकली बैकग्राउंड में यही होता है कि फाइट करना होता है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और पता नहीं किसी सोशल मीडिया के अंदर मौजूद नहीं, उसमें दो तीन काम जरूर करते हैं। एक ये है कि ना वो कॉमेडी पिक्चर, कॉमेडी के जो सीरियल होते हैं, ये सारी चीजें टॉम इड्रीस और बनाना डिका सब देखते रहते हैं। बेसिकली है कि उनको हंसना भी चाहता है, खुश रहना चाहते हैं, तो हंसने के लिए, खुश रहने के लिए ना भाई बहनों में ताल्लुक है, ना माँ को लतीफा बोलना आता है, ना बाप को कहानी बोलना आता है। ये तो पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है, घर का माहौल ऐसा बन गया कि घरों के अंदर खुशगवारी नहीं मिलती, तो बेसिकली या तो वो जाती है इसके लिए। दूसरा, जब हमारी सिस्टर ने, बेटी ने बताया ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन बेसिकली क्या है, मैं बताता हूँ। इंसान की बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं जानते हैं ज्यादा, कि हर ह्यूमन थॉट के लिए करस्पॉन्डिंग देयर इज अ केमिकल फ्लोइंग इन टू अवर बॉडी। एंगर है तो एड्रेनालाइन है, गुस्से में आदमी सैड है तो कॉर्टिसोल है, तो इस तरह से डिफरेंट डोपामाइन एक केमिकल है जो आदमी को हैप्पी रखता है, खुश रखता है। अगर हम अपने बच्चों को घर में खुश रखते हैं खिलौनों से, बातों से और गेम्स से, मुख्तलिफ चीजों से, तो उनका हैप्पीनेस, उनको डोपामाइन मिलने लगता है। क्योंकि वो घर के अंदर बंद होते हैं, डोपामाइन नहीं मिलता, तो देर इज नॉट टू ड्रग एडिक्शन, ड्रग लेने से उनके अंदर डोपामाइन आता है, खुशी का एहसास होता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ गुडनेस पैदा होता है। तो जहां मेरा क्वेश्चन ये है पेरेंट्स के लिए बिल्कुल, कि बच्चे अगर ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं और गैजेट के ओवर यूसेज की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं, वी बीइंग पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के साथ कनेक्टिविटी पैदा करना चाहिए, जो बातें करनी चाहिए, जो उनको खुश रखना चाहिए, उसके बजाय अगर हम उनसे दूरी अख्तियार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे खुशी पाने के लिए, डोपामाइन पाने के लिए, या तो ड्रग में जाते हैं या गैजेट में जाते हैं, उसका एडिक्शन शुरू होता है, उससे हैप्पीनेस मिलती है। दूसरा यह है कि जो उनका रेज है, जो गुस्सा है, जो एनर्जी है, उसको निकालने के लिए वो वहां जाते हैं। पिछले जमाने में सब एंगर जनरेशन के अंदर अल्लाह ताला ने यही खूबी रखी, यही फितरत रखी है, इसके इजहार के लिए फुटबॉल खेलना, गेम खेलना, आपस में झगड़े करना, वो डिस्प्यूट होता है, फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं आपस में, जब बाहर जाकर खेलने लगते हैं, तो ये सारा जो बॉडी के अंदर से जो केमिकल का फ्लो होता है, जिसमें रेज भी होता है, गुस्सा भी होता है, एनर्जी भी होती है, उसके इजहार के लिए वो मौका मौजूद था। इसी तरह घर में रिलेशनशिप बिल्डअप करने का जो तरीका पुराने जमाने में होता था, कैरम खेलते थे और वो बहुत से गेम्स आपस में माँ बाप बच्चे सब मिलकर खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, उसमें एक ट्रिक होता था, वो एक कमजोर भाई होता था, बार बार उसे चोर बनाते थे, उसमें पेपर में निशानी लगाते थे, आइडिया घर में हंसना, मजाक करना, मस्ती करना। रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक साथ खाना खाना जरूरी होता था, रात का खाना तो कम से कम दोपहर का खाना, इससे रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। बाप पूछेगा स्कूल में क्या हुआ, माँ पूछेगी तेरे तालीम के बारे में क्या हुआ, फ्रेंड भाई आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ये जो हम एलोन टुगेदर है, उसका ये तीन प्रॉब्लम है, क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम है, इसका मैंने बताया कि डोपामाइन इफेक्ट का प्रॉब्लम है दूसरा, और तीसरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो रिलेशनशिप हम बिल्डअप नहीं कर पाते, हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं। ये आर्टिफिशियल दुनिया ऐसा डिजाइन किया है इसने, पर वी हैव एन अवतार, एक और अवतार है हमारा, इसमें हम गरीब हैं इसमें बहुत गरीब दिखते हैं, हम काले हैं इसमें बहुत खूबसूरत दिखते हैं, ये कैमरा का कमाल है, बहुत हसीन बना देता है। हमको डाउट होने लगता है कि ये असल अमीन होने से नहीं, ये आईना दिखाता, आईना गलत है, इसमें आईना ही नहीं देखना है। बहुत से लोग जो है लड़कियां भी लिपस्टिक वगैरह वो सब करने के बाद इसमें सेल्फी ऑन करके देख लेंगे, हाँ ठीक है क्या, तो उनको डाउट है कि आईना सही नहीं दिखाता, ये सही दिखाता है, हालांकि ये गलत दिखाता है, ये झूठ है। इसमें आप शर्म के साथ आपने फोटो ले लिया, पोस्ट पोस्ट करना है तो पोस्ट भी बना दे सकते हैं, दाढ़ी ट्रिम करके नहीं आया, बाल सही बना के नहीं आया, तो फोटो लेने के बाद थोड़ा सा एडिटिंग के लिए बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, पोस्ट कर दीजिए आप, सही आर्टिफिशियल दुनिया में हम रहते हैं, नकली दुनिया में रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं। और हर आदमी चाहता है कि उसकी हर बात की तारीफ हो, उसकी हर अदा की तारीफ हो। मैं कभी कभी होटल जाता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो 5-6 लड़कियां 10 लड़कियां आती हैं और खाना खत्म होने तक कम से कम 100 स्नैप्स मारती है, इधर से मारे, इधर से मारे, खाने को मारे, झिंगे को मारे। अब उसके बाद पोस्टिंग शुरू होती है, पोस्टिंग करते रहते हैं। तो उनको चाहिए हर बार आता। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि हर बार ये नहीं चाहिए इंसान, इससे उसका जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है वो रुक जाता है। बच्चों को गम होना चाहिए, बच्चों को तकलीफ होनी चाहिए, बच्चों को ना कहना चाहिए, बच्चों को गिरना चाहिए, फेल होना चाहिए। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि इंसानी डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा गिरे ही नहीं, बच्चे को नुकसान ही ना हो, तो ऐसी दुनिया हो ही नहीं सकती। आगे चलने के बाद लड़कियां हम शादी करके जाएंगे तो शौहर से भी सुनना पड़ेगा, सास से भी सुनना पड़ेगा, बच्चों से भी, बच्चे जब बच्चे बड़े होने लगते हैं वो पलट कर जवाब देने लगते हैं। दुनिया में जो गम भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, ये जो दुनिया है इसमें सिर्फ अंगूठा है, सिर्फ उसमें लव है, उसमें एक हार्ट कोई डाल देगा, कोई किस डाल देगा, यही है। तो इंसान चाहता है कि हमेशा उसे अप्रिसिएशन मिले, लव मिले, शाबाशी मिले। असल दुनिया में ऐसा होता नहीं। जॉब हम करते हैं मर्द लोग तो कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, कितने बार फेल होते हैं, कितने बार बॉस के पास गाली सुनना पड़ता है, कितने बार कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता और वापस प्रोडक्ट कर देता है तो लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। रियल जिंदगी तो यही है जहां आपको तकलीफ भी सहना है, गम भी सहना है, मुसीबत भी सहनी है, गुफ्तगू भी सुनना पड़ता है। ये सारी चीजें रियल लाइफ है। वर्चुअल लाइफ में जब चले जाते हैं, बाहर की दुनिया से शट कर लेते हैं, तो रियल फ्रेंडशिप और फेसबुक की फ्रेंडशिप दोनों बराबर नहीं है। रियल फ्रेंडशिप में अगर साथ जाएंगे तो दोस्त बोलेगा अरे तेरे से बात आती है, नाया नहीं क्या, है ना, यहाँ कोई बोलता ही नहीं। रियल दुनिया लेके फ्रेंडशिप नहीं है, दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में जब होते हैं तो बोलेंगे चाय पीएंगे, पैसे दे, पैसे नहीं होंगे तो बोलेंगे भाई वकील है, पैसे नहीं निकालता, यहाँ कौन बोलता है आपको। तो ये जो वर्चुअल दुनिया है, यहाँ एक अवतार है हमारा जिसमें बदसूरत खूबसूरत लगता है, गरीब इसमें मालदार लगता है, बीमार इसमें हेल्थी लगता है, और कोई परफॉर्मेंस के बगैर यहाँ शबाशी मिलती है, खुशियां मिलती है। लेकिन वर्चुअल दुनिया अलग है, रियल दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है, जहाँ उनकी बात तकलीफ परेशानी होती है। और साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं, माओ बिलखसूस मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों की बात जरूरियात के बारे में कहा जाता है कि इंटेंशनली डिनाई करना चाहिए, हमेशा उनकी ख्वाहिश पूरी करें। आज समोसा चाहिए, कल ब्रेड का टोस्ट चाहिए, परसों फलाद चाहिए। जब आप इस चीज की आदत करेंगे तो आगे चलकर दुनिया में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि 3 वक्त का खाना नहीं मिलता, डेजर्ट में रहना पड़ता है। ये जितने बड़े लोगों का आप देखते हैं, ये सब पैसे कमा के हैं, ऐसे ही कमा के नहीं आए, पूछिए इन लोगों से। कभी कभी जाकर जो है वहां पेट्रोल जहां निकालते हैं वहां जाकर रहना पड़ता है, खाना नहीं मिलता, इंतजार करना पड़ता है, या कुछ पैक करके लेकर चले जाते हैं। क्या सर ऐसे ही होता है ना, टाइम पे पहुंचना है तो क्या करते हैं, $1 वाला 1 रियाल वाला वो लेके चले जाते हैं हम लोग, चलते चलते बर्गर ले लिए, पिज्जा ले लिए, क्या पता नहीं करते थे। जिंदगी में भूख, प्यास, तकलीफ और क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजों से देखा पड़ता है। हम जो एलोन है हमारी जिंदगी में, मिलजुल कर रहते हुए भी घर में, ये तन्हाई की जिंदगी इंसान के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है, नुकसानदायक है और आगे चलकर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आखिर में मैं अपने दोस्तों से, नौजवानों से बिल्कुल सोचता हूँ कि 2 बातें याद रखिए। नंबर 1 क्रिएटिविटी है, इसको जितना आप कम करेंगे, इसका इस्तेमाल कम से कम आप करें। अब मेरा ये सजेशन है, मेरे भी बच्चे हैं आपकी उम्र के, 1 घंटे से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बच्चे झूठ बोलते हैं, नहीं अभी इसी में क्वेश्चन पेपर आता, फला आता, है ना, माँ भी परेशान आता, अगर इसमें क्वेश्चन पेपर हल नहीं करेंगे तो बच्चा फेल हो जाएगा। 1000 दफा इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन पेपर के लिए 10 मिनट की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ तो क्वेश्चन पेपर साल ना करो, फेल हो जाए तो कई बात नहीं। रियल वर्ल्ड में जाके पढ़ो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, क्लास में पढ़ो, टीचर को क्वेश्चन करो, टीचर को परेशान करो। हम लोग जब क्वेश्चन करते थे तो हमारे टीचर परेशान होती थी, कहते थे अगले दिन हम आगे जवाब देंगे। इंटेलिजेंट बनाइए बच्चों को, ये सारी चीजें जो इंसान के नुकसान है। नंबर 1 है कि इसका यूसेज जितना कम से कम करेंगे, उतना आपकी क्रिएटिविटी, उतना आपका इंटेलिजेंस, उतना आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग, उतना आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा। नंबर 1। नंबर 2, रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसकी शुरुआत माँ बाप से होनी चाहिए, माँ बाप के साथ उससे ताल्लुक होना चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए कुरान का वादा, रब्बुक अल्लाह ताबुद इल्ला इया, तुम्हारे रब ने फैसला किया है कि सिवाय एक खुदा के किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना,
कहे, आगे कहा वला तकुल्लहुमा उनको उत्तर न कहो, वला तनहरहुमा उनको झिड़क कर बात न करो, वकुल्लहुमा कौलन करीमा और उनके साथ बहुत ही प्यारे अंदाज से बात करो, वक्फिज लहुमा जनाह जुल, जिस तरह से मुर्गी पर फैलाकर अपने बच्चों को आगोश में ले लेती है, नौजवानों में कहा गया कि अपने वालिदैन को अपने प्यार और मोहब्बत के पर के अंदर रखो, गोया कि माँ बाप पर शफ़क़त करो, माँ बाप पर प्यार करो, माँ बाप पर निछावर हो जाओ। ये तालीम नहीं होने के नतीजे में आज का एंगर जनरेशन माँ बाप के साथ रूठ बात करने लगता है, बैक जो है टॉक करने लगता है, फाइट करने लगता है। इससे माँ बाप का कुछ भी नुकसान नहीं होता, नुकसान में इंसान का होता है। मैं बात अपनी बात रखकर खत्म करूंगा, दुनिया में सबके साथ इंसाफ हो सकता है, लेकिन माँ बाप के साथ इंसाफ नहीं, उनके साथ सिर्फ उसने सलूक होना चाहिए, उनके साथ एहसान होना चाहिए। तो रिलेशनशिप वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ बिल्डअप करना चाहिए। ये दो बुनियादी चीजें जिस पर हमें याद रखना है, गौर करना है, काम करना है। अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला खूब खूब तरक्की अता फरमाए, खूब रहमत कर बरकत नाज़िल फरमाए, और मेहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के कामों में अल्लाह ताला खूब कर बरकत अता फरमाए, और इनकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाकर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर से नवाजे। आमीन। الحمد لله رب العالمين.